एक मार्च दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। भविष्य निधि के खाते से पैसा निकालने पर कर लगाने के फैसले से बवाल, लेकिन वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सरकार के फैसले की वकालत की।
कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आप NPS लें या आप EPFO लें, आपको कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, और इस कारण हम लोगों ने ये परिवर्तन पेश किया है।
अमरीका में सबको सुपर ट्यूजडे का इंतजार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र के एक ऐसे गाँव के बारे में जहाँ मेहमानों का स्वागत पत्थरों से किया जाता है।
ये पत्थर हम बचपन से खाते हैं और इससे कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। इसका टेस्ट मिट्टी जैसा लगता है, यानी खाने में कोई तकलीफ नहीं होती ना कुछ।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार प्रगति सक्सेना से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने BBC से विस्तृत बातचीत में बजट में इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड EPF से पैसा निकालने पर कर लगाने के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए बताया कि बजट का उद्देश्य पेंशन प्लान्स को NPS और EPF को बराबर करना है। PPF निकालने पर किसी तरह का कर नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत के ग्रामीण और शहरी इलाकों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की अहम कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों के लिए एजेंसी UNHCR ने चेतावनी दी है कि मैसेडोनिया से लगी ग्रीस की सीमा पर प्रवासियों के लगातार इकट्ठा होने से मानवीय आपदा के पैदा होने का खतरा है। UNHCR के प्रवक्ता एड्रियन एडवर्ड्स ने कहा कि यूरोपीय सरकारें प्रवासी संकट पर एक नीति नहीं अपना रही हैं, जिससे ये संकट और गहरा गया है। इस साल में अब तक 1,00,000 से भी ज्यादा प्रवासी भूमध्य सागर से यूरोप पहुंच चुके हैं। जर्मनी की सर्वोच्च अदालत ने धूर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी NPD पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। इस दल पर आरोप है कि इसने प्रवासी विरोधी हिंसा को भड़काया। जर्मनी के ऊपरी सदन फेडरल असेंबली ने यह केस किया था। फेडरल असेंबली की दलील है कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी NPD नस्लवादी है और भय के माहौल को उकसाती है। फेडरल असेंबली के अध्यक्ष स्टानिस्ला टिलिच ने कहा कि जर्मनी जिन मूल्यों का प्रतीक है, ये पार्टी उनके खिलाफ है। NPD असंवैधानिक और बेहद आक्रामक दल है। ये मानवता विरोधी दल है जो व्यवस्था पर सिर्फ उसके कार्यक्रमों के आधार पर ही सवाल उठाता है। इसलिए एक लंबी और विस्तृत जांच के बाद फेडरल असेंबली ने अपना प्रस्ताव कालश्रुहे में अदालत के सामने पेश किया है। ये थे स्टानिस्लाव टिलिच के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनके देश के संसदीय चुनावों के नतीजों से यह जाहिर होता है कि उनके देश के लोग बाहरी दुनिया से कोई विरोध नहीं चाहते। राष्ट्रपति रूहानी चुनावी नतीजों में उन्हें और उनके समर्थकों को भारी बढ़त मिलने के बाद अपना पहला अहम भाषण दे रहे थे। ईरान में रूढ़िवादी दल चुनाव हार गए हैं। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि ईरान के लोगों ने दुनिया को साफ बता दिया है कि वो चरम पंथ नहीं, संतुलन चाहते हैं, विरोध नहीं, सहयोग के समर्थक हैं। ब्रितानी बैंक बार्कलेज ने घोषणा की है कि वह अफ्रीका में अपने एक सदी पुराने ऑपरेशंस को खत्म करना चाहता है। पिछले साल बार्कलेज की शेयर कीमतों में तेज गिरावट आने के बाद बैंक ने अपने काम को पुनर्गठित करने की योजना के तहत ये घोषणा की। बैंक के मुताबिक वह अपनी अफ्रीकी इकाई से अगले 2-3 सालों में धीरे धीरे अपने शेयर घटा लेगा। BBC के आर्थिक मामलों के संवाददाता का कहना है कि कुछ पर्यवेक्षकों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका की कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण भी बैंक ने यह फैसला किया है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। वित्त मंत्री अरुण जेटली की बजट घोषणाओं में भविष्य निधि निकासी पर टैक्स की बात पर सरकार को घेरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तमाम विरोधों और विवाद के बाद राजस्व सचिव ने घोषणा की कि PPF निकासी पर किसी तरह का कर नहीं लगेगा, पर EPF से अगर आप पैसे निकालते हैं तो टैक्स लगेगा, लेकिन वो भी मूलधन पर मिलने वाले ब्याज की राशि के 60% पर। हमारी साथी शिल्पा कानन ने वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से बात की और पूछा कि इस प्रावधान पर आपकी जो आलोचना हो रही है उस पर आपका क्या कहना है।
इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से विस्तार से व्यापक रूप से स्पष्टीकरण किया है। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को जो पेंशन प्लान्स हैं उनको बराबर लाना है, और पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो NPS है वो आज के समय बराबर नहीं है ईपीएफओ से, तो एनपीएस को और ईपीएफओ को हम लोगों को बराबर कर देना है। आपको ये भी समझना चाहिए कि पीपीएफ वाले लोगों को इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं, क्योंकि हम पीपीएफ की बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप ईपीएफओ में हैं, और आज के समय ईपीएफओ में 3.7 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 3 करोड़ लोग जो हैं वो 15,000 से नीचे के हैं, जो 15,000 से नीचे की उनकी कमाई है हर महीने, वो भी इससे प्रभावित नहीं है। सिर्फ वो लोग प्रभावित है, करीब 60 से 70 लाख लोग जो 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं, उनके लिए भविष्य में हम लोगों ने ये प्रस्ताव लाया है कि हम एक परिवर्तन लाएंगे, और उस परिवर्तन पे अब काफ़ी चर्चा हो रही है, आपको मालूम है उस पे काफ़ी लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त की है। इसका एक कारण भी है, हम लोग जैसे मैंने पहले ही कहा, कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आप एनपीएस लें या आप ईपीएफओ लें, आपको कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, और इस कारण हम लोगों ने ये परिवर्तन पेश किया है।
आपकी सरकार रिफॉर्म्स की बात कर रही है, लेकिन सब्सिडी भी दे रही हैं, क्या इसे एक चुनावी बजट कह सकते हैं? यूपी और पंजाब सामने हैं, आप इससे सहमत हैं?
चुनाव तो बहुत दूर हैं, हमारी कोशिश है, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दें, मतलब इंडिया में बिल्कुल एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं, और उसी लक्ष्य से हमारी कोशिश है, चाहे वो आप रूरल इकोनॉमी देख लीजिए या आप अर्बन इकोनॉमी देख लीजिए, यानी कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है या जो शहरी अर्थव्यवस्था है, दोनों में हम लोग बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों में हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम, चाहे आप शहरी नज़रिए से देखें या ग्रामीण नज़रिए से देखें, आपको इस बजट में ज़रूर दोनों जो हैं क्षेत्रों में आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, बहुत कुछ हम लोगों ने सुधार लाया है।
तो आपके असेसमेंट से आप खुश हैं ये बजट से, जो या और करना चाहते थे?
खुश तो आप लोगों को होना है, हमारी तरफ से तो हम बस मेहनत कर सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं।
वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से बात कर रही थी शिल्पा कानन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 2004 में इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोपित पुलिस वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर पुनर्विचार करने को तैयार है। लश्कर ए तोयबा चरमपंथी डेविड हेडली ने मुंबई अदालत में कहा था कि इशरत जहां लश्कर के लिए काम करती थी। उधर इशरत जहां पर पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई के बयान को लेकर भी पूरे दिन गहमा गहमी चलती रही। विनीत खरे की रिपोर्ट।
इशरत जहां क्या लश्कर ए तोयबा के लिए काम करती थी या नहीं, इस पर लंबे समय से बहस रही है। गुजरात पुलिस का दावा रहा है कि इशरत जहां का मकसद गुजरात में राजनीतिक नेताओं की हत्या करना था, जबकि एक दूसरा तबका इन आरोपों को गलत बताता रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी अमरीकी चरमपंथी डेविड हेडली ने मुंबई की एक अदालत में कहा था कि इशरत जहां लश्कर के लिए काम करती थी। गुजरात पुलिस के उस वक्त के डीआईजी डीजी वंजारा सहित दूसरे अधिकारियों पर इशरत जहां एनकाउंटर मामले में उनके कथित रोल को लेकर मुंबई अदालत में मुकदमा चल रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने आज कहा कि मामले को लिस्ट होने दो, तभी हम देखेंगे। पुलिसकर्मियों के वकील एमएल शर्मा ने कहा कि डेविड हेडली का बयान महत्वपूर्ण है और ये साबित करता है कि इशरत जहां लश्कर ए तोयबा के लिए काम करती थी। एमएल शर्मा ने अदालत में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि डेविड हेडली के बयानों से साबित हो गया है कि गुजरात पुलिस ने इशरत जहां सहित जिन 4 लोगों को मारा था वो चरमपंथी थे। याचिका में अदालत से आदेश देने को कहा गया था कि गुजरात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। पीटीआई के अनुसार एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में अदालत से कहा कि वो आदेश दे कि आतंकवादी को मारना भारतीय कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है। उधर इशरत जहां मामले में पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई के बयानों पर बहस जारी है। पिल्लई ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री के तौर पर पी चिदम्बरम ने वर्ष 2004 इशरत जहां मामले पर अदालत में पेश किए गए हलफनामे में बदलाव किए थे। पहले हलफनामे में इशरत जहां को लश्कर का चरमपंथी बताया गया था, जबकि दूसरे हलफनामे से इस बात को हटा दिया गया था। इन आरोपों के बाद पी चिदम्बरम ने कहा कि इस फैसले में पिल्लई सहित वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
Why does it point fingers? I am saying so. I say that as minister, when it was brought to my notice.
पी चिदम्बरम कह रहे थे कि मंत्री के तौर पर जब पहला हलफनामा मेरे पास भेजा गया वो अस्पष्ट था। पहला हलफनामा मेरी अनुमति के बिना फाइल किया गया था और उसे गलत तरीके से पेश किया गया था, और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उस हलफनामे को सही किया जाए। इसलिए हमने गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख सहित अन्य अफसरों के साथ बातचीत के बाद सप्लीमेंट्री हलफनामा दायर किया। पी चिदम्बरम ने कहा कि वो गृह मंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी कबूल करते हैं और वो निराश हैं कि जीके पिल्लई खुद को इस फैसले से अलग कर रहे हैं। इस पर जीके पिल्लई ने समाचार चैनल NDTV से कहा कि पी चिदम्बरम ने कथित तौर पर पूरे हलफनामे को दोबारा लिखवाया और उस दौरान कोई कुछ नहीं कह सकता था। इस बहस पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मामला जनता के सामने है।
नो, देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन द चेंज ऑफ एफिडेविट्स एंड जीके पिल्लई वाज द होम सेक्रेटरी व्हेन चिदंबरम वाज होम मिनिस्टर।
किरण रिजिजू कह रहे थे कि इस बात पर कोई बहस नहीं है कि हलफनामे में बदलाव हुआ और जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे उस वक्त जीके पिल्लई गृह सचिव थे। स्थितियां बताती हैं कि उस दौरान क्या हुआ और पूरी बात जनता के सामने है। ये थे किरण रिजिजू। उधर दिल्ली के अखबार पाइनियर में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर एक लेख को लेकर भी हंगामा रहा। रिपोर्ट में कार्ति चिदम्बरम की कंपनी को लेकर कई इल्जाम लगाए गए थे। कार्ति चिदम्बरम ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने सभी नियमों का पालन किया है। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब कुछ खबरें भारत से बाहर से। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी अपनी पार्टियों की उम्मीदवारी हासिल करने का प्रयास करने वाले नेताओं के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। 12 राज्यों में रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक या दोनों दलों के उम्मीदवार तय करने के लिए मतदान किया जाएगा। ये मुकाबले पूर्व में वर्माउंट से लेकर दक्षिण में टेक्सास और जॉर्जिया जैसे राज्यों में होंगे। अभी तक 4 राज्यों में हुए मतदान में रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन बढ़त बनाए हुए हैं। वर्जीनिया से ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।
एक तरफ अमेरिका को फिर से महान बनाने के नारे, तो दूसरी तरफ एक ऐसा मंजर जिससे कई अमेरिकी पानी पानी हो रहे।
वो ऐसे हो जाते बिल्कुल निढाल और कहने लगते हैं, मेरी मदद करो, मुझे पानी चाहिए।
रिपब्लिकन पार्टी के फ्रंट रनर डोनाल्ड ट्रंप अपने खिलाफ खड़े मार्को रूबियो के बारे में कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में रूबियो का गला सूखने लगता है। जवाब में रूबियो ट्रंप का पैंट गीला होने की बात कर रहे हैं।
उन्हें हमेशा बड़ा आईना चाहिए, स्टेज पर तो इतने से काम चल जाता है। शायद वो देखना चाहते हैं कि कहीं उनकी पैंट गीली तो नहीं हो गई।
कई लोग बहस के इस नए स्टैंडर्ड को सुपर ट्यूसडे का बुखार कह रहे हैं, क्योंकि आज दांव पर है 11 राज्य। ये वो दिन है जब उम्मीदवार एक ही दिन 11 इम्तिहान देते हैं और ये रिपोर्ट कार्ड कई बार पास और फेल का फैसला कर देती है, और इसलिए इसकी तैयारी में उम्मीदवारों ने एक कोने से दूसरे कोने के चक्कर लगाए हैं। कभी सेल्फी ली है तो कभी अजनबियों को गले लगाया है और लाखों डॉलर के इश्तहारों की बारिश की है।
I'm Hillary Clinton.
I'm Ted Cruz.
I'm Bernie Sanders.
I'm Marco Rubio.
I'm Donald Trump and I approve this message.
जो सर्वेज आ रहे हैं उनकी माने तो डेमोक्रेट्स 11 में से 6 राज्यों में हिलरी क्लिंटन के साथ खड़े दिख रहे हैं और 4 में बर्नी सैंडर्स के साथ, एक में बराबरी की टक्कर है।
I've always loved the Clintons and
मैं डेमोक्रेट हूँ, मैंने हमेशा क्लिंटन का साथ दिया है। मुझे लगता है कि बर्नी सैंडर्स अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे।
बर्नी सैंडर्स मुझे सही इंसान लगते हैं और मेरे लिए यही काफी है।
वहीं रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप 11 में से 10 राज्यों में आगे चल रहे हैं और एक में नंबर 2 पर हैं। लेकिन कई रिपब्लिकन के लिए कोई भी उम्मीदवार चुनना मुश्किल फैसला साबित हो रहा है।
मैं विकल्पों की कमी से निराश हूँ, हमें कम खराब उम्मीदवारों को चुनना पड़ेगा।
डेमोक्रेट्स ये देख रहे हैं कि ये रेस लंबी चलेगी या फिर जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन रिपब्लिकन्स में बहस इस बात पर भी हो रही है कि ट्रंप अगर प्राइमरीज जीत भी जाएं, तो क्या कोई तरीका है कि उन्हें उम्मीदवार बनने से रोका जा सके, क्योंकि उनमें से कई का मानना है कि ट्रंप से पार्टी के वजूद को खतरा है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया।
ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने कहा है कि देश के संसदीय चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि उनके लोग दुनिया से टकराव को खत्म करना चाहते हैं। उनके समर्थक और सुधारवादी सहयोगी धड़े को बड़ी सफलता मिलने के बाद रूहानी ने ये बात कही है। कट्टरपंथी रूढ़िवादी संसद में अपना बहुमत खो चुके हैं। BBC संवाददाताओं के भेजे संवाद के साथ अमर शर्मा।
ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने कहा है कि उनके देश के लोगों ने दुनिया को बड़े साफ शब्दों में बता दिया है कि वे कट्टरपंथ की बजाय उदार पंथ को तवज्जो देते हैं और किसी टकराव की बजाय सहयोग करने में उनकी दिलचस्पी है। जनता को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों ने जनता के 2 साल पहले के संदेश को एक बार फिर दोहराया है। हसन रोहानी ने कहा,
در سال 92 مردم با صدای رسا به دنیا گفتند،
जनता ने दुनिया को बड़े ही साफ शब्दों में बता दिया है कि हमें उदार पंथ चाहिए ना कि कट्टरपंथी। उन्होंने बड़ी जोर देकर कहा है कि हम दुनिया के साथ संवाद चाहते हैं, टकराव नहीं। साथ ही उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज में कहा है कि हम तर्कों और विचारों के साथ दुनिया से वार्ता के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं।
با منطق و استدلال و پشت میز مذاکره حل و فصل کنیم।
हसन रोहानी। विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रपति की स्थिति मजबूत हुई है, ऐसे में सुधारवादी पश्चिमी देशों के साथ गहन वार्ता कर सकते हैं। संसदीय चुनावों में ईरान के राष्ट्रपति के सुधारवादियों और समर्थकों का गठबंधन लिस्ट ऑफ होप तेहरान प्रांत में भारी जीत की ओर बढ़ रहा है। ये गठबंधन तेहरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए बनाया गया है। कट्टरपंथी रूढ़िवादियों ने संसद में अपना बहुमत और नियंत्रण खो दिया है।
ईरानी लोग दुनिया से टकराव दूर करने के पक्ष में।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। राजस्थान में इस वर्ष 2 महीनों में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। गत वर्ष जनवरी में राज्य में स्वाइन फ्लू का कहर काफी गंभीर रहा था। स्कूल कॉलेज भी एहतियातन बंद करने पड़े थे और पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ा था। चिकित्सा विभाग के मुताबिक इस बार पिछले साल जैसी गंभीर स्थिति बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी 34 लोगों के मरने की खबर है। जयपुर से आभा शर्मा की रिपोर्ट।
राजस्थान में पिछले 2 महीनों में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। इसमें राजधानी जयपुर सहित अलवर, भरतपुर, अजमेर के भी मामले हैं। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की बढ़ती संख्या से आम जनता की चिंता तो बढ़ ही जाती है, वहीं चिकित्सा विभाग के लिए भी इससे निपटना कम चुनौती नहीं है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर आदित्य आत्रेय से बीबीसी ने इस बारे में बात की। उनका कहना था कि 2015 के मुकाबले इस बार स्थिति विशेष चिंताजनक बिल्कुल नहीं है।
कंपेरेटिवली इसके साथ तो हमारे फिगर जो है वो मोर देन ऑलमोस्ट ट्रिपल था, इससे तो बहुत कम है। इसमें मोर देन 70% केसेज है ना ओल्ड एज वाले हैं और कुछ बच्चे हैं थोड़े बहुत। कारण कोई ज्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब वही था कि भाई एकदम से फ्लक्चुएट किया है मौसम ने, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी एकदम से टेम्परेचर रात को ज्यादा कभी दिन में कम। और बाकी हमारे यहाँ सब जगह दवाइयाँ हैं, पूरा इंतजाम है, टीमें काम कर रही हैं, हम लोग घर घर सर्वे करवा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं।
क्या निजी अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी है? ये जानने के लिए बीबीसी ने जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सागर पानगड़िया से बात की। उनका कहना था कि शुरुआत में सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही लक्षण होने से मरीज के स्तर पर अक्सर इसकी पहचान मुश्किल है और हर सर्दी जुकाम के मरीज का स्वाइन फ्लू टेस्ट संभव भी नहीं है।
स्वाइन फ्लू लाइक ही होता है तो हर फ्लू वाला पेशेंट टेस्टिंग के लिए पहुंच जाता, वो इतना तो रिसोर्स ही नहीं है गवर्नमेंट के पास और प्राइवेट सेक्टर। स्वाइन फ्लू का टेस्ट महंगा होता है प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट में जो लाइन लगती है तो वहाँ तो फिर क्योंकि बल कितना हो जाता है समटाइम्स तो किटी खत्म हो जाता है। और गवर्नमेंट कोशिश पूरी करती है लेकिन उसमें जिनका इंडिकेटेड है कि उनका तो होना चाहिए, पेशेंट पब्लिक क्या अपना डिस्क्रिप्शन खुद कर ले लेती है कि मेरा क्यों नहीं कर रहा, मेरे भी तो हो सकता है, हो तो सकता ही है, हो सकते हैं कि तो मना किसी की भी नहीं।
राज्य में स्वाइन फ्लू के प्रति जागरूकता बढ़ी है और सुविधाएं भी, पर वर्ष 2009 तक निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने पर तुरंत सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और इलाज शुरू होने में अक्सर काफी देर हो जाती थी। अपनी बहन को इसी कारण खोने वाले जयपुर के अक्षत शर्मा ने बीबीसी से अपना अनुभव साझा किया।
2016 के अंदर बता रहा हूँ, मैंने भी 2 टेस्ट करवाए हैं जिसमें पॉजिटिव निकले मेरी फैमिली के अंदर, पर उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला, मैंने प्राइवेट के अंदर ही है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी मेरे को ऐसा ध्यान है अच्छी तरह से कि रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आती है, पर 16 से 17 घंटे के अंदर ही उनका फोन आ गया कि इसकी बेबी पॉजिटिव है और आप मेडिसिन ले लीजिए, हॉस्पिटल आ जाइए। ये तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इसकी जागरूकता के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी थी 2009 के अंदर राजस्थान सरकार के साथ, वो शायद किसी ने नहीं लड़ी। हमने लड़ाई लड़ी थी जब हमारे घर का पेशेंट गया था, तो हमने लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद गवर्नमेंट ये थी और गवर्नमेंट ने सारे हॉस्पिटल्स को परमिशन दी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी, कि आप स्वाइन फ्लू का पेशेंट आता है तो उसको अपने पास रख सकते हैं और उनका इलाज करा सकते हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण स्वाइन फ्लू का असर पिछले 2 महीनों में ज्यादा रहा। अब जबकि सर्दी का मौसम विदा ले रहा है, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वाइन फ्लू का दौर भी जल्दी ही थमेगा। जयपुर से आभा शर्मा।
और अब आज की विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के गांव में मेहमानों का स्वागत पत्थरों से किया जाता है। पत्थर फेंक कर नहीं, बल्कि उन्हें प्लेट में सजाकर स्वाद लेने के लिए पेश किया जाता है। गांव के लोग भी इन खास किस्म के पत्थरों को बड़े चाव से चबाते हैं। सदियों से जारी इस अनोखी परंपरा के बारे में एक रिपोर्ट के साथ संजय तिवारी।
और ये पत्थर खाते हैं लोग?
जी खाते हैं। मैं तो अब भी खा के बताया ये और खा के बताता हूँ।
टेस्ट में कैसा लगा?
टेस्ट में पत्थर उमा कोई बात ही नहीं आ रही ना, सब स्वादिष्ट लग रहा है एकदम।
हम इस वक्त विदर्भ के गिरड़ गांव में हैं, जहां लोग शौकिया पत्थर खाते हैं, सुपारी या फल की तरह। आव भगत के वक्त मेहमानों को भी खाने के लिए पत्थर पेश किए जाते हैं। लेकिन क्यों? हमने ये सवाल किया गांव में रहने वाले अमोल बबन राव तेलंग से।
ये पत्थर हम बचपन से खाते हैं और इससे कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। इसका टेस्ट मिट्टी जैसा लगता है, यानी खाने में कोई तकलीफ नहीं होती ना कुछ। उसको सुपारी बोलते हैं, या खेतों में निकलती है, या खेतों में से चुन के लाना पड़ता है, फिर यहाँ लाके बेचते हैं।
3 पीढ़ियों से यहाँ रहने वाले शेख राशिद इस खास पत्थर के स्वाद के बारे में भी कहते हैं।
3 पीढ़ियों से यहीं पर ही और इसको यूज कर रहे हैं, और इसका टेस्ट जो है वो मुल्तानी मिट्टी की तरह है।
इस खास किस्म के पत्थर का स्वाद सिर्फ गांव के लोगों के ही मुंह नहीं लगा, बल्कि बाहर के लोग भी गिरड़ गांव पहुंचते हैं और पत्थर खरीदकर साथ ले जाते हैं।
हम नंदूरी में रहते, 10 रुपए में हम सुपारी खरीदे घर लेके जा रहे हैं। सुपारी कहते हैं पत्थर है।
इस गांव में बाबा फरीद नाम के सूफी संत की याद में एक सदियों पुराना धार्मिक स्थान भी है। गिरड़ के 52 वर्षीय आरिफ काजी ने डबल एमए और एमएड तक तालीम हासिल की है। वो शिक्षक रह चुके हैं। बाबा फरीद की मज़ार पर 5 पीढ़ियों से उनका परिवार खादिम की भूमिका निभाता है। आरिफ काजी बताते हैं कि बाबा फरीद से जुड़ी कहानियों में पत्थर खाने की अनोखी परंपरा का मूल है।
हाँ, आज भी उसी जगह पे जब भी नागर बखर होता है, सर ये सुपारी नुमा पत्थर, वो फिर इलायची हो, लौंग हो, खीव के दाने हो, चावल हो, किराने का पूरा सामान जैसा हम लोग जो जनरली आज वापरते हैं, वो सारी चीज़ आज भी उन खेतों में निकलती है जब भी नागर बखर होता है सर। और यहाँ से दूर दूर तक जाती है, अजमेर और विदेश तक जाती है सर यहाँ से सुपारियाँ।
गाँव के लोग हर पत्थर को नहीं खाते। दरअसल इस पूरे इलाके में खेतों में खास तरह के पत्थर पाए जाते हैं, जो मुलायम होते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। इन पत्थरों को उनके आकार के मुताबिक बादाम, सुपारी, खजूर, अखरोट, गुड़ की डली, नरियल जैसे नाम दिए गए हैं। गिरड़ में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले कई लोग इन पत्थरों को बेचकर हर दिन 100-200 रुपए की कमाई कर लेते हैं। इनमें से एक हैं 80 साल की राधा भाई राउत।
क्या दाम लगाए, क्या दाम में दे रही है?
मोटी 10 रुपए, मजली 10 रुपए का 2, अनिया 4 रुपए का 10 के 4।
हालांकि नागपुर स्थित जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की भूगर्भ शास्त्र प्रयोगशाला इन पत्थरों की एक्सरे डिफ्रैक्शन जांच कर चुकी है। यहां के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर आर के चटर्जी का कहना है कि ये पत्थर दरअसल चूने की तरह कैल्शियम कार्बोनाइट है, जो क्रिस्टल रूप में है। ये एसिड में पिघलता है, पानी में नहीं। वो कहते हैं कि इन पत्थरों को इस तरह खाने से हाजमे पर और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
कैल्शियम कार्बोनेट अगर 90% से ज़्यादा है इसमें, तो उसका मतलब हानि आप सोच ही सकते कि अगर आप चूना जब खाते तो शरीर को जो कुछ ऐसा मतलब एक्सेस कैल्शियम से और सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट कैल्शियम। पानी में भी अगर आपका CaCO3 होता है कभी घुला हुआ, इट डिजॉल्व इन एसिड एक्चुअली। और एक है कि सी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एसिड से डिजॉल्व होता है, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, तो इसको बॉडी में इट विल बी अ रेसिड्यू एंड इट कैन क्रिएट हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस।
लेकिन गिरड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद डॉक्टर सागर गायकवाड़ ने बताया कि पत्थर खाने का कोई खास असर उन्हें मरीजों पर नहीं दिखाई दिया।
ये पत्थर खाने से यहाँ पे तो ऐसे कोई केसेस तो नहीं आए हैं, कोई किडनी डिसऑर्डर नहीं है, ना ही कोई लीवर प्रॉब्लम है। जो भी जनरल एब्डोमिनल कंप्लेंट लेके आते हैं, जो पेन करके आते हैं, वो तो जनरल जो इन्फेक्टिव कंडीशन रहती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह या फिर टाइफाइड से रिलेटेड, बस उसी तरह के पेशेंट रहते हैं। जो बाकी जगह पे भी प्रोपोर्शनेट उतने जितने मिलते हैं उतने यहाँ पे मिलते हैं।
गिरड़ में चाव से पत्थर खाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रकृति की खूबसूरती देखने इस गांव तक आने वाले लोग भी यहाँ आकर इन खास पत्थरों का स्वाद लेना नहीं भूलते।
मेहमानों का स्वागत पत्थरों से। और इस समय T20 एशिया कप में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला चल रहा है। हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त इस मैच पर नजर रखे हुए हैं, बताइए क्या है ताज़ा स्थिति।
जी देखिए रेहान, इस समय श्रीलंका का स्कोर थोड़ी देर पहले 62-4 विकेट के नुकसान पर, पारी का 13वां ओवर चल रहा है और अभी जिस तरह से नए ओवर की शुरुआत हुई, पहली ही गेंद पर छक्का लगा तो अब श्रीलंका का स्कोर 68 रन है। रविंद्र जडेजा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। आज भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और उनका फैसला तब सही साबित हुआ जब आशीष नेहरा ने शुरुआत में ही कामयाबी दिला दी। दिनेश चांदीमल जो कि अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, उन पर भरोसा भी था, लेकिन वो केवल 4 रन बना सके। धोनी ने विकेट के पीछे उनका कैच पकड़ा और उसके बाद श्रीलंकाई टीम और मुश्किल में तब फंस गई जब बुमराह ने रोहन जयसूर्य को आउट किया। उनका व्यक्तिगत स्कोर तब केवल 3 रन था और श्रीलंका का स्कोर 15 रन था। और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब तिलक रत्न दिलशान जो कि श्रीलंका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं, वो 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पांड्या की गेंद पर अश्विन को कैच दे बैठे। इस दौरान उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी के दौरान 2 चौके लगाए। कप्तान एंजो मैथ्यूज जब मैदान में उतरे तो उनसे भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका भी शिकार किया। हालाँकि एंजेलो मैथ्यूज ने 18 रन बना लिए थे। फिलहाल 73 रन है श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय टीम ने इस मैच पर अपनी पकड़ काफ़ी हद तक अभी तक के खेल में बना ली है। उधर कल पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 7 विकेट से मात दी। एक समय तो पाकिस्तान के 3 विकेट केवल 17 रन पर गिर चुके थे। आखिरकार उमर अकमल और शोएब मलिक का बल्ला चमका। अकमल ने नाबाद 50 और मलिक ने नाबाद 63 रन बनाकर जीत के लिए 130 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। जीत के बाद कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले एक मैच मिल जाता तो बेहतर होता।
हाँ जी बिल्कुल, अगर इंडिया के मैच से पहले इस तरह का एक मैच मिल जाता तो ज्यादा अच्छा हो जाता, जरा थोड़ा एनवायरनमेंट का कंडीशन का भी पता चल जाता। बट वेल आई थिंक नेक्स्ट गेम दो अगेंस्ट होम टीम एंड देन श्रीलंका की टीम के खिलाफ, सो बोथ टीम गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो दर्द काफी है शाहिद अफरीदी को, पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं। वहीं कुआलालंपुर में आयोजित की जा रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम नाइजीरिया से 3-0 से हार गई। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने लगातार 2 जीत हासिल की थी। वैसे उसे अभी भी स्विट्जरलैंड और स्लोवाकिया गणराज्य के खिलाफ खेलना है। दूसरी तरफ भारतीय महिला टीम पुर्तगाल को 3-0 से हराने में कामयाब रही।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश। और सभा के अंत में नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बजट में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने पर कर लगाने के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए कहा कि बजट का उद्देश्य पेंशन प्लान्स को एनपीएस और ईपीएफ को बराबर करना है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों के लिए एजेंसी UNHCR ने चेतावनी दी है कि मैसेडोनिया से लगी ग्रीस की सीमा पर प्रवासियों के लगातार इकट्ठा होने से मानवीय आपदा के पैदा होने का खतरा है। जर्मनी की सर्वोच्च अदालत ने दूरदक्षिणपंथी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनके देश के संसदीय चुनावों के नतीजों से ये जाहिर होता है कि उनके देश के लोग बाहरी दुनिया से कोई विरोध नहीं चाहते। ब्रितानी बैंक बार्कलेज ने घोषणा की है कि वो अफ्रीका में अपने एक सदी पुराने ऑपरेशंस को खत्म करना चाहता है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावरों के हमले में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ कम से कम 5 इराकी सैनिक मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की शाकिर आलम ने। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।